नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मुंडका विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 6 नए आधुनिक वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन शुरू किए। दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित संपत्ति कर निपटान योजना सुनियो वर्ष 2025-26 की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी की गई। और दिल्ली पुलिस ने कहा, इंडिया एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सुरक्षा भंग करने से जुड़े मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मुंडका विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि वर्षों से उपेक्षित पड़े दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड को 1000 करोड़ का बजट प्रदान किया गया है, जिससे गांवों का विकास लगातार होता रहेगा। उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में दिल्ली सरकार ने अंत्योदय के संकल्प के साथ ग्रामीण दिल्ली में सड़क, पानी, सीवरेज, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सुविधाओं को तेज गति से आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मात्र 365 दिनों में ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 1600 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं।
मैं कोई भी कोर कसर छोड़ूंगी नहीं। वर्षों से जो जो आप सबके मन में आशाएं हैं, इस क्षेत्र की जो जरूरत है उसको पूरा करने का काम आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी करके देगी। इस एक साल में पूरी गांव देहात की जो हमारी बेल्ट है, इसमें लगभग 1600 करोड़ के काम लगा के दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार गांवों में सड़कों का निर्माण, बड़े नालों का निर्माण, बॉर्डर क्षेत्रों का विकास, नए स्कूल, अस्पताल और डिस्पेंसरी स्थापित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि लगभग 500-600 करोड़ रुपए की लागत से पेरिफेरल सड़कों और नालों के निर्माण के कार्य भी पूरे ग्रामीण क्षेत्र में कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से मुंडका क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा, स्वच्छ पेयजल और बेहतर सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत होने के साथ साथ स्थानीय नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 6 नए आधुनिक वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही राजधानी में ऐसे स्टेशनों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है, जो देश में सबसे अधिक है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये नए स्टेशन प्रदूषण के खिलाफ डेटा आधारित कार्रवाई को मजबूत करते हैं। श्री सिंह ने बताया कि इन स्टेशनों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषण के स्तर की जानकारी मिलेगी, जिससे पर्यावरण की बेहतर योजना बनाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि ये स्टेशन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसरो अर्थ स्टेशन, दिल्ली कैंट, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में लगाए गए हैं। श्री सिंह ने जानकारी दी कि दिल्ली सरकार ने वायु रक्षक अभियान शुरू किया है, जिसमें 100 प्रवर्तन कर्मी तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान में 14 और नए स्टेशन लगाने की योजना भी शामिल है, जिससे पूरे साल प्रदूषण पर नजर रखी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि यह कदम शहरी वायु गुणवत्ता प्रबंधन में राजधानी की अग्रणी भूमिका को और मजबूत करेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आज दिल्ली एनसीआर में धूल रहित और टिकाऊ शहरी सड़कों के लिए मानक ढांचा और सड़क परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता ज्ञापन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी शहरी सड़कों को पक्का करने और हरियाली के मानक ढांचे के अनुरूप है। इनका उद्देश्य एनसीआर में सड़क चौराहों, मार्ग उपयोग, हरियाली उपायों और सड़क रखरखाव प्रोटोकॉल में सुधार करना है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज अपने कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने पर सौर ऊर्जा विस्तार, हरित क्षेत्र में वृद्धि, सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार, तकनीकी सक्षम पुस्तकालय और यूथ लीडरशिप प्रोग्राम की घोषणा की। साथ ही श्री गुप्ता ने एक वर्ष में हुए विधानसभा परिसर में उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने यूथ लीडरशिप प्रोग्राम के बारे में भी जानकारी दी।
हम चाहते हैं कि हम युवाओं को मौका दें कि वो दिल्ली विधानसभा के परिसर में एक लीडरशिप प्रोग्राम जो है उसका वो हिस्सा बने और वो विधिवत एक वर्ष का वो डिप्लोमा हो जिसमें उनको हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी।
श्री गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा को आधुनिक शासन का वैश्विक मॉडल बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि डिजिटल नवाचार को पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़कर विधानसभा अब लोगों के लिए पहले से कहीं अधिक सुलभ और जवाबदेही है। विधानसभा अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि विधानसभा ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के कार्यान्वयन के माध्यम से पूरी तरह से बिना पेपर के डिजिटल युग में एक लंबी छलांग लगाई है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 4 अगस्त 2025 को आयोजित पहला पूर्ण डिजिटल सत्र एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसमें विधायी कार्य भौतिकी कागजी कार्रवाई से सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित हो गया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र सचदेवा ने आज इंडिया एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा हंगामा किए जाने के मामले में भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे जाने के फैसले का स्वागत किया है।
एआई समिट कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था, वो कार्यक्रम राष्ट्र की गौरव गाथा का कार्यक्रम था, भारत की शक्ति का कार्यक्रम था कि कैसे भारत विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी और उनके गुर्गों जो हरकत की, उसी के परिणाम है कि आज कोर्ट ने उदय भानु को 4 दिन की रिमांड पर भेजा। ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस का आला कमान भी इस साजिश में शामिल था और ये संयोग नहीं है। जब जब देश की छवि प्रतिष्ठा बढ़ रही होती है तब तक कांग्रेस उसके समर्थक दल इसी तरह की हरकतें करते हैं।
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने बताया कि इंडिया एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सुरक्षा बंद भंग करने से जुड़े मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप भी शामिल हैं। अपराध शाखा के विशेष आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने संवाददाताओं को ये जानकारी दी।
मामला दर्ज होने के बाद से अब तक कुल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में इंडियन यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी भी शामिल हैं। सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। इस प्रक्रिया में इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु छिप जी को भी गिरफ्तार किया गया है।
श्री श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि इस संदर्भ में पूरे षड्यंत्र का पता करने के उद्देश्य से अन्य राज्यों की पुलिस के साथ भी लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस के अनुसार अब तक की जांच के आधार पर गहरी साजिश के तहत इस अपराध को अंजाम दिया गया, जिसके पुख्ता प्रमाण उनके पास हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित संपत्ति कर निपटान योजना सुनियो वर्ष 2025-26 की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी तक कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से पहले के बकाया कर पर ब्याज और दंड से पूर्ण छूट दी जाएगी। हालांकि इसके लिए वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 तथा पिछले 5 वर्षों का मूल कर जमा करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त 5% विलंब शुल्क के साथ निपटान की सुविधा भी उपलब्ध है। निगम ने बताया कि योजना की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी रखी गई है, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज जनकपुरी के कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान श्री सूद ने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए आवश्यक तथा ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने आज दिल्ली सचिवालय में अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों पर बैठक की। श्री सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान वंचित और आवश्यकता निरत वर्गों के समग्र उत्थान, सामाजिक न्याय तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विचार विमर्श किया गया। दिल्ली सरकार ने आज नजफगढ़ ड्रेन के दोनों किनारों पर 2 लेन सड़क बनाने की परियोजना को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस परियोजना पर कुल 450 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का प्रमुख मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक दबाव कम करना, यात्रा समय और ईंधन खपत में कमी लाना और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को घटाना है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह परियोजना दिल्ली के परिवहन ढांचे को नई दिशा देगी और राजधानी में एक वैकल्पिक इंट्रासिटी कॉरिडोर विकसित करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम टूरिज्म लीडरशिप समिट का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यटन एक उद्योग से कहीं ज्यादा है और यह संस्कृतियों तथा आर्थिक अवसरों के बीच एक सेतु का काम करता है। उन्होंने कहा कि पर्यटन सौहार्दपूर्ण कूटनीति का एक सशक्त माध्यम है।
Tourism is more than an industry, it is a bridge between the cultures, a driver of economic opportunity and a powerful instrument of soft diplomacy. The travel corridor between India and the United States reflects not only growing economic engagement but also deep people-to-people ties rooted in shared values.
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सड़क सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के मुख्य दूत जीन टोड ने आज नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा के लिए मेक अ सेफ्टी स्टेटमेंट नाम से एक वैश्विक अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बेहतर करने के लिए दैनिक जीवन में अपनाए जाने वाले संबंधित उपायों को प्रोत्साहित करना है। एक रिपोर्ट।
इस अभियान में गाड़ी चलाने वालों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए आसान और असरदार तरीके अपनाने की सलाह दी जाएगी। अपने संबोधन में श्री टोड ने कहा कि भारत की उनकी यात्रा सेकेंड डेकेड ऑफ एक्शन और रोड सेफ्टी के लिए प्रयासों को तीव्र करने की संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या 2030 तक आधी करनी है। संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा कोष के सहयोग से भारत में सड़क सुरक्षा के लिए सतत वित्त पोषण एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण नामक परियोजना का भी शुभारंभ किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के तकनीकी सहयोग से की गई इस पहल का उद्देश्य पूरे भारत में सड़क सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करना है। सकलीन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर में अरुणाचल प्रदेश की 3 युवतियों के नस्लीय उत्पीड़न का शिकार होने पर चिंता व्यक्त की है। श्री सिंधिया ने कहा कि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ इस बारे में बातचीत की है। उन्होंने तत्काल और कड़ी कार्रवाई के लिए इस मामले को दिल्ली पुलिस आयुक्त के सामने उठाया है। श्री सिंधिया ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आश्वस्त किया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। श्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा और गरिमा महत्वपूर्ण है, उनके विरुद्ध होने वाला अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। उत्तर रेलवे ने आगामी होली पर्व को ध्यान में रखते हुए रेल यात्रियों के सुविधाजनक आवागमन के लिए अनारक्षित होली स्पेशल रेलगाड़ियों के संचालन का निर्णय लिया है। रेलवे ने बताया कि स्पेशल रेलगाड़ियां हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से लेकर मथुरा जंक्शन और मथुरा जंक्शन से हजरत निजामुद्दीन स्टेशन तक चलाई जाएंगी। रेलवे के अनुसार इन रेलगाड़ियों का संचालन इस महीने की 27 तारीख से लेकर अगले महीने की 3 तारीख तक होगा। नई दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तैराकी परिसर में 3 दिवसीय पैरा तैराकी कोचिंग कार्यशाला आयोजित की जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में विशेषज्ञ और कोच भारत में पैरा तैराकी को बेहतर बनाने पर चर्चा करेंगे। और राजधानी में आज दिन भर धूप खिली रहने के साथ मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। विभाग के अनुसार कल सुबह आसमान साफ रहेगा, वहीं कल का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मुंडका विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 6 नए आधुनिक वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन शुरू किए। दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित संपत्ति कर निपटान योजना सुनियो वर्ष 2025-26 की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी की गई। और दिल्ली पुलिस ने कहा इंडिया एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सुरक्षा भंग करने से जुड़े मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।